पंचम अध्याय शीर्षक उपसंहार। कबीर विश्व साहित्य कोश के दिव्यमान सूर्य हैं, जो युगों युगों से अपनी एक निष्ठ साधना और अलौकिक प्रतिभा के बल पर आलोकित होते रहे हैं। कबीर का जीवन वृत्त कुछ घटनाओं, किंवदंतियों और यदा कदा उल्लेखों के रूप में हमारे सामने आता है। कबीर के विषय में यह प्रसिद्ध है कि अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने मौखिक रूप में ही अपने समय का यथार्थ व्यक्त किया है। कबीर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व में मानवीयता के पक्षधर रहे हैं। कबीर युगा अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वह युग प्रवर्तन कर सकते हैं। उनके स्वाधीन एवं निर्भीक विचारों से उन्होंने समाज सुधार का नवीन मार्ग विकसित किया। उनकी समय दृष्टि ने ही उन्हें सर्वकालिक एवं सार्वभौम बनाया। हिंदी साहित्य के हजार वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। वास्तविक अर्थों में कबीर ऐसे कालदर्शी कवि हैं जो सामाजिक न्याय और समता को अपने युग में देखना चाहते हैं। कबीर का संपूर्ण साहित्य ही उनका व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का सामाजिक कार्य करता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निराधरण समाज द्वारा होता है। समाज उसी के व्यक्तित्व को महत्व देता है, जिसमें समाज उपयोगी तत्व पाए जाते हैं। मानव कल्याण की भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय होता है। कबीर के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता यह है कि वह मानव मात्र के प्रेमी हैं। मनुष्य कल्याण की कामना मात्र से ही उनका मन करुणा से द्रवीभूत हो उठता है। सामाजिक भ्रष्टाचारों और पाखंड को देखकर वह वितृष्णा से भर उठते हैं। कबीर स्वयं कर्मशील व्यक्ति थे तथा समाज को भी वह सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना चाहते थे। सामाजिक कर्मकांडों से कबीर को घृणा थी। वह समाज को मिथ्याचारों के जाल से निकालकर सहज सरल धर्म के मार्ग पर चलाना चाहते थे। कबीर के उपदेश आज भी गाह्य है, क्योंकि उनके जीवन की व्यवहारिकता और समरसता है। मानवतावाद की स्थापना के लिए कबीर ने अपरिग्रह, कष्ट सहिष्णुता पर दुखकारता, भाईचारे की भावना को प्रसार किया। मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न करने वाले ब्रह्म आचारों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति कठोर रुख कबीर ने अपनाया तथा छुआछूत और जाति अस्पृश्यता की भावना को कभी स्वीकार नहीं किया। कबीर के प्रहारों की कठोरता में ही उनकी दृढ़ निष्ठा छिपी हुई थी। कबीर अत्यंत करुणाप्रिय व्यक्ति थे, हिंसा के वह कट्टर विरोधी थे। कबीर के जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानव मात्र में समता और एकता स्थापित करना था। कबीर ने कनक कामनी की ज्वाला से समाज को बचाने का भरकस प्रयास किया। उनके विचारानुसार यह दोनों ही दुख का मूल कारण है। कबीर का संपूर्ण जीवन सत्य अनुभूति और सत्य के प्रचार में बीता। असत्य उन्हें अप्रिय था, सत्य के मार्ग पर वह कभी विचलित नहीं हुए। कबीर की कविता समाज की छाया है। कबीर ने अपने साहित्य द्वारा समाज को एक स्वतंत्र विचारधारा प्रदान की है। कबीर ने स्वतंत्र विचारक के नाते सामाजिक कुरीतियों का समूल नाश कर मानव धर्म की स्थापना का प्रशंसनीय कार्य किया। अपने ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण ही कबीर ने तत्कालीन समाज की संघर्षमूलक प्रवृत्तियों को शांति प्रदान करने का प्रयास किया और रूढ़िवादी समाज को समन्वय और शांति का मार्ग सुझाया। अपने स्वाधीन एवं निर्भीक विचारों से कबीर ने सुधार का नवीन मार्ग विकसित किया। अपने विराट व्यक्तित्व द्वारा कबीर ने लोगों का मार्गदर्शन किया। कबीर मानव धर्म के अग्रदूत बन मध्ययुग में अवतरित हुए। उन्होंने भारतीय जनता को पारस्परिक प्रेम और पाखंडों के विरुद्ध कड़ी आवाज उठाते हुए समाज का विकासोन्मुख किया। इतिहास समाज से प्रभावित होता है और समाज अपनी प्राथमिक इकाई द्वारा व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। किसी समाज का इतिहास उस काल विशेष की सीमा में मर्यादित नहीं, उसकी सुदीर्घकालीन परंपरा होती है। जब कभी भी समाज की व्यवस्था डबाडोल होती है, धार्मिक रूढ़िवादिता जोर पकड़ती है या राजनीतिक क्षेत्र में घोर अशांति फैलती है, तब संतरस्त जनता का उद्धार करने के लिए कोई न कोई युग पुरुष आवंटित होता है। भारत की उलझी हुई सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक हथकंडे तथा राजनीतिक उलटफेर के समय कबीर का आविर्भाव हुआ। कबीर जैसे युग पुरुष तथा साहित्य के क्षेत्र में भविष्य सृष्टा मेधावी व्यक्ति का आगमन आकस्मिक घटना नहीं, उसके लिए परिस्थितियां प्रेरक होती हैं। कबीर ने तत्कालीन विषम परिस्थितियों में संतुलन लाने तथा एक अधिक व्यवहारिक जीवन पद्धति को जनता के सामने रखने का महान कार्य किया। कबीर अपने साधारण से जीवन में असाधारण संकल्प शक्ति के कारण ही युग प्रतिनिधित्व कर सके हैं। वे अपने युग की परिस्थितियों और समस्याओं से भली भांति परिचित थे। स्वयं आर्थिक विपन्नताओं और सामाजिक दबावों में कार्यशील रहते हुए उन्होंने सक्रिय एवं जीवंत दृष्टिकोण का परिचय दिया। व्यक्ति के आचार विचार के अनुरूप ही समाज का स्वरूप निर्मित होता है। सुव्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करने से समाज का स्वरूप भी सुव्यवस्थित रहता है, लेकिन कर्तव्य पथ से विमुखता सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनती है। जिस समय कबीर का आविर्भाव हुआ, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अस्त व्यस्तता विश्रृंखलता फैली हुई थी। सामाजिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। सर्वत्र मिथ्या आडंबरों और कुरीतियों का प्राधान्य था। हिंदू मुस्लिम वर्गों की संघर्ष अपनी पराकाष्ठता पर था। इस युग का समाज सामंतवादी पद्धति पर विन्यस्त था। मुस्लिम शासकों की अत्याचारपूर्ण नीतियों ने समाज को जर्जरित कर दिया। समाज अपनी हीन अवस्था में था। उसमें किसी प्रकार का उत्साह शेष न रह गया था और न कोई स्फूर्ति ही थी। साधारण जनता में शिक्षा और नैतिकता की कमी थी। कुचरित्रता, वेश्यागमन, धोखाधड़ी, चोर बाजारी व ठगी समाज में चारों ओर व्याप्त थी। हिंदू समाज की वर्ण आश्रम व्यवस्था के कारण समाज में विषमता का जोर था। जाति पाति तथा भेदभाव के कारण समाज अनेक अंधविश्वासों एवं अज्ञान का शिकार बना हुआ था। शूद्र और मलेच्छों की छाया से सनातनी धर्म श्रम धर्मी घृणा करते थे। हिंदू रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी थे। कबीर के अनुसार समाज में व्यक्ति का स्वरूप विभत्स हो गया था। वह लोभी और लालची था तथा दूसरों की चाटुकारी में अपना जीवन गवा रहा था। माया के कारण जीवों में तृष्णा पैदा हो रही थी। सारा संसार माया के फंदे में फंस गया था। कनक कामिनी ने मनुष्य का मार्ग खोल रखा था। सर्वत्र विलासिता का वातावरण होने के कारण मानव की चारित्रिक विशेषताएं नष्ट हो गई थी। यद्यपि यह धर्म भक्ति का ही युग था, पर उसमें इतने श्रृंगारिक भाव आ गए थे कि समाज में विलासी वातावरण पैदा हो गया था। कबीर युगीन समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। स्त्रियों को मात्र भोग्या की चीज समझी जाती थी। सम्मान का स्थान उन्हें प्राप्त नहीं था। विलासिता के कारण कबीर ने नारी को समाज के पतन का कारण माना है। भ्रष्टाचार पूर्ण समाज में केवल लालची लोभी मस्खरी करने वालों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। कबीर ने समाज के विकृत रूप का यथार्थ अंकन किया है। कबीर के समय समाज अपनी निम्नतर अवस्था में था। उसमें न तो कोई प्रकार का उत्साह अवशेष रह गया था और न कोई स्फूर्ति ही। उसमें शिक्षा और सभ्यता दोनों का अभाव था। तत्कालीन समाज जीर्ण शीर्ण अनैतिकता से पूर्ण विभत्स स्वरूप वाला तथा घोर पतन अवस्था की ओर उन्मुख था। असत्य अनाचार बाह्य आडंबर विषमता वर्ण विषय भेद के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप कबीर के हृदय में क्रांति की भावना पैदा हुई तथा उन्होंने समाज की इन विषम परिस्थितियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। कबीर युगीन सामाजिक जीवन सामाजिक मिथ्यावाद और कुरूतियों के माया जाल से ग्रस्त था। कबीर ने उक्त वातावरण के प्रति ग्लानी का भाव पैदा कर जनता का हृदय भक्ति के क्षेत्र में उन्मुख किया। अपनी निर्भीकता और स्पष्टवादिता के कारण ही कबीर ने जनजीवन असत्य का खंडन किया। सामाजिक अराजकता को दूर कर समाज में समरसता लाने का भरकस प्रयास कबीर ने किया। कबीर सच्चे संत थे। उन्होंने एक स्वस्थ विचिंतन धारा को प्रभावित किया। कबीर ने जनता में भेदभावहीन सहज धर्म और सामाजिक नियमों का ठोस ढांचा खड़ा किया, जिससे जनता के नैतिक जीवन में सुधार की प्रवृत्ति जागृत हुई। भक्त कवियों में कबीर ने सबसे पहले यह समझा कि जातिगत विषमता और ऊंच नीच की भावना को त्याग कर समाज को एक नई राह दिखाई जाए। व्यक्तिगत रूप से वह किसी धर्म या जाति के विरोधी नहीं थे। वह केवल अनाचरों और कुरूतियों का नाश करना चाहते थे। उनका विचार था कि सांप्रदायिकता, छुआछात, ऊंच नीच सभी विचारधाराएं वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करती है तथा सामाजिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के लिए कबीर ने क्रांति का सहारा लिया। कबीर क्रांति की प्रतिमूर्ति थी। बाह्य आडंबर और असत्य के प्रति उत्पन्न प्रखर प्रतिक्रिया ही उनकी क्रांति का आधार थी। अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा कबीर ने धर्म, समाज आदि क्षेत्र में व्याप्त कालुषियों को धोख दिया। कबीर का संपूर्ण जीवन सत्य अनुभूति और सत्य के प्रचार में व्यतीत हुआ। असत्य के वह कट्टर विरोधी थे। भारत के स्वतंत्र विचारकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। कबीर की सहज भावना जनहित की भावना थी। दलित पिछड़े वर्गों को उत्थान का संकेत दिया है। संपूर्ण मानव जीवन को उन्होंने एक समभावना का मार्ग सुझाया। कबीर ने त्याग, तपस्या, सदाचार, समता और सद्भावना का वह साम्यवादी रूप समाज के सम्मुख रखा जिसमें जनहित की भावना के साथ साथ मानव की बाह्य और आंतरिक शांति निहित थी। मानव समाज सामाजिक नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों की एक आदर्श व्यवस्था है। समाज जिन परिस्थितियों को निंदनीय अथवा अवांछनीय माने वे सामाजिक बुराइयां मानी जाती हैं। वर्तमान युग में सामाजिक बुराइयां दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है नगर जीवन के भौतिक आकर्षण, आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं और तथा आजीविका के साधनों की तलाश में लोगों का गांव छोड़कर शहर की ओर भागना। नगरों की जनसंख्या तेजी से अनियोजित ढंग से बढ़ने के कारण नगर जीवन में निम्न मध्य वर्ग को अपना समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समाज में बुराइयों को पनपने की खुले आम न्योता मिलता है। अकुशल अशिक्षित ग्रामीण श्रमिकों का नगर का उद्योगपति, ठेकेदार और व्यापारी अधिकतम शोषण करता है। अजनबीपन और अकेलेपन की स्थिति में नशाखोरी तथा अनेक प्रकार के अर्थज कामज अपराधों की वृद्धि हो रही है। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश से संबंधित सत्ताधारियों के भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण से उत्पन्न समस्याएं, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता से संबंध, बेरोजगारी, रिश्वत, राजनीतिक असंतोष, अवसरवादिता, धर्म के क्षेत्र में फैले अविश्वास, बाह्य आडंबर आदि से संबंधित बुराइयों को रखा जाता है। समाज में परिवर्तन की स्थिति गतिशीलता की द्योतक है। कोई भी स्थिति एक सी नहीं रहती। जो जो समय चक्र चलता रहता है त्यों त्यों समाज की स्थितियों में नूतनता उभरने लगती है। मानव की वृत्ति जिज्ञासा मूलक होती है। उसका पुरातनता को छोड़ना और नूतनता के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। परंपरागत मूल्यों के प्रति अनास्था तथा नूतन मूल्यों की खोज होना प्रत्येक युग में समसामायिक उथल पुथल के प्रामाणिक साक्ष्य होते हैं। भारतीय समाज की यह विडंबना है कि उसे ऐसी स्थितियों का शिकार होना पड़ता है। हमारे मूल्य और परंपराएं टूट रही हैं और नवीन आस्थाएं जन्म ले रही हैं। आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में मानव की इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं, उपेक्षाएं बढ़ने लगी हैं। आज का व्यक्ति समाज की रूढ़ियों, परंपराओं, नैतिक मूल्यों के बंधनों को स्वीकार नहीं करता। आज का समाज अमूल्य धर्मी समाज है। इसमें तेजी से मूल्यों का विघटन हो रहा है। अधुनतातन युग में विज्ञान के नए नए आविष्कारों से समाज के अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। औद्योगिक व तकनीकी उन्नति ने जीवन को मशीन रूप दे दिया है। गांव उजड़कर शहर की गंदी बस्तियों और तंग घरों में बस रहे हैं। आज का व्यक्ति अर्थ को जीवन का महत्वपूर्ण अंश समझता है। विज्ञान निर्मित वित्त व्यवस्था ने सामान्य जन जीवन को भौतिक सुसाधनों के जाल में इस तरह जकड़ रखा है कि वह मन की स्वच्छता से दूर जा खड़ा है। व्यक्ति यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसकी इच्छाएं पैसे से पूरी हो सकती है। पद, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, स्वार्थ, धन, ऐश्वर्य आदि सब कुछ अर्थव्यवस्था से ही प्रचलित है। अधिक से अधिक अर्थोपार्जन के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है, भले ही उसे अनेकता का सहारा क्यों न लेना पड़े। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के आदान प्रदान में मूल्य भिन्नता के कारण अंतर विरोध की स्थिति आई है। नवीन मान्यताओं और नवीन मूल्यों ने जन्म लिया। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारत में भौतिक संस्कृति का प्रस्फुटन हुआ। सामाजिक तथा धार्मिक यंत्रणाओं से छटपटाते स्वतंत्रता के लिए व्याकुल युवा मानस ने पाश्चात्य संस्कृति का स्वागत किया। पुरानी पीढ़ी परंपरागत मान्यताओं के परिवर्तन का विरोध करती थी, जबकि युवा पीढ़ी नवीन प्रगतिशील मूल्यों को आत्मसात कर परंपराओं का विरोध कर रही थी। आज का युग संधि युग है, जहां परंपराओं, रूढ़ियों का युग मर रहा है और नूतन चिंताओं का भविष्य अपनी ओर खींच रहा है। आधुनिकता तन परिवेश में शिक्षित हुई भारतीय नारी परंपरागत व्यवहारिक संस्था के प्रति वृद्धों के प्रति तत्पर हुई। माता पिता के प्रति संतान अपनी पारिवारिक भूमिका से विमुख होती जा रही है। माता पिता के प्रति उनका दृष्टिकोण श्रद्धा एवं अनुराग का न रहकर उदासीनता एवं विवश निर्वाह का होता जा रहा है। युवा पीढ़ी के चिंतन के अनुसार पुरातन मूल्य उनका विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। गरीबी और बेरोजगारी का चोली दामन का रिश्ता है। आज समाज में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ग्रहण कर चुकी है। शिक्षित बेरोजगारी की एक बाढ़ से आ गई है। शिक्षित वर्ग को स्तरीय रोजगार नहीं मिलने की चिंता सताई जा रही है, जिससे वह कुंठाग्रस्त होकर संरचनात्मक कार्यों के बदले विध्वंसात्मक कार्यों की तरफ उन्मुख हो चला है। यह सर्वविदित है कि देश में जनसंख्या विस्फोट एक विकराल एवं गंभीर मुद्दा बन चुका है। आर्थिक विकास की अब तक जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं, वह बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण महत्वहीन होती जा रही हैं। बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोका जाए, यह समस्या आज विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, आवास समस्या आदि अनेक समस्याएं हमारे सामने खड़ी होकर विकास व प्रगति के लिए बनाई गई योजनाओं एवं क्रियान्वयन को प्रभावहीन बना रही है। शताब्दियों पश्चात भी आज कबीर हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। कबीर के सारे आग्रह मनुष्य जीवन को और जगत को संवारने के रहे हैं। कबीर की सोच और चिंताओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन रहा है। तत्कालीन जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों का तार्किक खंडन कबीर ने किया। आज धार्मिक मजहबी कट्टरवादी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, खूनी झड़पें फसाद हो रहे हैं और शत्रुता परस्पर बदला लेने के स्थायी मोर्चे ठन गए हैं। कबीर के युग में भी कुछ ऐसे ही स्थितियाँ थीं, पर कबीर ने एक उदार स्वतंत्र मुक्त व्यक्ति के रूप में नई दिशा सुझाई, स्वतंत्रता अर्जित की, एक कठिन कार्य दिखा लाया। कबीर का अध्यात्म वह मूल आधार है जिसके द्वारा समूचे विश्व में एक पुनः परिवर्तन और क्रांति घटित हो सकती है। ऐसे ही उदात्त विचारों के कारण कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उनके विचारों को आत्मसात करके ही हम समाज को उन्मुख और वह स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिसमें धार्मिक कालुष्य न हो, हिंदू मुस्लिम भेदभाव न हो। इसलिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कबीर आज अपने विचारों के कारण पहले से अधिक प्रासंगिक है, बल्कि अपरिहार्य हो गए हैं। कबीर अपने युग के एक सबल प्रतिभाशाली क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी प्रतिभा संपन्न विचारक के नाते कबीर ने मध्य युग की जनता को जनहित का मार्ग सुझाया। कबीर का समस्त जीवन उनके काल की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है। समाज की आँच जिसे गला न सकी, वह कबीर इस नव युग में गांधी बनकर आया। कबीर का संत रूप गांधी में आया और साथ ही उनका अखंड स्वभाव सुधारक भी गांधी की कोमल काया में प्रवेश कर गया। कबीर और गांधी इन दोनों संतों की अभिव्यक्ति का माध्यम लगभग एक ही था। महात्मा गांधी के अछूत आंदोलन का उत्स कबीर में है। समाज का अध्योपतन कबीर को पीड़ित करता है, इसलिए समाज सुधार की भावना उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होती, बल्कि प्रबल होकर सामने आती है। समाज को नई दिशा दिखाने और व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करने का महत्वपूर्ण कार्य कबीर ने किया। महात्मा कबीर का युग सामाजिक संगठन की दृष्टि से अस्त व्यस्त, असंगति और वैषम्य का युग था। उस समय समाज की दशा बड़ी सोचनी थी। व्यक्तिवाद का प्राबल्य था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असत, मिथ्या, आडंबर की प्रधानता थी। कबीर कालीन मध्य युग धर्म की प्रचलित रूपरेखा के अनुसार बाह्य आडंबर में फंसकर अपने साधारण तत्वों को भूल चुका था। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्म की प्रणालियां गलत मार्ग ग्रहण कर चली थी। कबीर ने एक विचारक के नाते भारतीय जनता में प्रश्रय पाने वाले इस प्रवृत्ति को परखा और फिर अपने सहज धर्म द्वारा मानव धर्म की स्थापना की। कबीर समकालीन देश की सामाजिक दशा बहुत खराब थी। कबीर जिस समय भारतीय समाज में पैदा हुए थे, वह बहुत उथल पुथल का समय था। उसमें संस्कृति, धर्म और विचार की अनेक तेज धाराएं परस्पर टकरा रही थी। कबीर ने जिस भीषण सच और उसकी भयावह संभावनाओं का साक्षात किया था, उससे भारतीय जीवन भारतीय समाज को बचाने के लिए वह एक ऐसे लोक धर्म का विकास करना चाहते थे जिसका आधार प्रेम हो। कबीर जीवन भर जुटे रहे अपने लक्ष्य की पूर्ति में, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कबीर का काल सर्वव्यापकता लिए हुए है, जिसमें संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से साहित्य, धर्म, दर्शन, कला में नवीन ऊर्जा दिखाई दी थी। यह हमारे समग्र राष्ट्र की एकजुटता के साथ मुख्य धारा का आधुनिकतापन रूप भी था, जिसका श्रेय कबीर को जाता है। कबीर की हर स्तर पर ऐतिहासिक भूमिका रही है। कबीर एक सर्वमान्य मानव धर्म के पोषक थे और उसकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने जिस अभूतपूर्व निर्भीकता और साहस का परिचय दिया, वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। मानव धर्म अथवा विश्व धर्म की प्रतिष्ठा भौतिक साधनों से सर्वथा असंभव है। मानव धर्म ही भविष्य की आशा है, क्योंकि इसका अर्थ है विश्व में स्थित आत्मशक्ति का क्रमशः साक्षात्कार और एक दिव्य यथार्थ का बोध, जिसके अंतर्गत समस्त विश्व है और सब कुछ एक युग है। युग पुरुष सदा ही अपने युग की दैहिक, मानसिक, आत्मिक तीनों शक्तियों की आदि व्याधि को पहचानता समझता है तथा उपयुक्त निदान उपचार भी कर पाता है। जड़ता को गतिशीलता में बदलकर, रूढ़ियों को मिटाकर, धार्मिक आडंबरों का खंडन करके समूचे राष्ट्र जीवन को पुनः स्वस्थ बनाता है। इसे ही युगीन परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। ये आमूल एवं समग्र परिवर्तन की वास्तविक प्रगतिशीलता लाते हैं। कबीर भी ऐसी प्रगतिशीलता को लाए। आज पुनः लोक का मार्ग अवरुद्ध है। शोषण, छद्म, अन्याय, हिंसा, हत्या की सामूहिक कार्यवाहियों से समूचे लोक का उद्वेदन विनाश हो रहा है। लोक हत्यारी शक्तियां लोक विरुद्ध लोक विद्वेषी नीतियों से तरह तरह की विनाश लीला रच रही है। नैसर्गिक प्रकृति से लेकर प्राणी मात्र और मानवीय प्रकृति तक सब संत्रस्त है, उत्पीड़ित है। इन स्थितियों की पुनः राजनीतिक स्वार्थ में दोहन करने के लिए सभी राजनीतिज्ञ दृष्टि लगाए रहते हैं। इनमें कुछ हितैषी बनते होने के मुखौटे लगाकर युगों से उत्पीड़न पीछे शोषण लोग को भ्रमित करते रहते हैं। इन बिखरी लोक शक्तियों को आज एकत्र होना है। हमें सबसे पहले इन बिखरी शक्तियों को एकजुट करने वाले अपने नायक कबीर की शिक्षाओं को पुनः अपने कर्म का हिस्सा बनाना है। तरह तरह की विभेदकारी पूजा पद्धतियों के दलदल से बाहर आना है। इन व्यर्थ के जंजालों को छोड़ना और मुक्त होकर अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। स्वाभिमान, न्याय और बराबरी की लड़ाई लड़नी है। कबीर ने देश की दशा को भली प्रकार परखा और एक निद्वंद व्यक्ति के नाते साहस के साथ धर्म और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। निसंकोच भाव से बुराइयों की आलोचना की और जहां जहां भी उन्हें कोई अच्छाई की झलक दिखाई दी, उसे अपनी वाणी में व्यक्त किया। कबीर ने धर्म और समाज के जीवन में क्रांति का अमर संदेश फूंक दिया। इस क्रांति के फलस्वरूप निराश्रित पड़ी जनता ने एक बार फिर से सहारा पाकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास लेने का प्रयास किया और पाखंड के पैरों में कुचली जाती हुई भोली भांति जनता ने कबीर को सुधारक के रूप में स्वीकार करके अपना पथ प्रदर्शक माना। कबीर का संदेश किसी एक वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, देश अथवा काल तक सीमित नहीं है। वह सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, चिरंतन है। वह अतीत में जितना सार्थक था उतना ही वर्तमान में प्रासंगिक है और भविष्य में भी उतना ही उपादेय बन सकेगा।